येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनुआभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गोरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्तवत्सल भक्तवांचा कल्पत्रु शरणागत वत्सल दया के मूर्ति दया के सागर दया निधि करुणा के साधक करुणा के सिंधु कृपा के साधक कृपा के सिंधु उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी के परम अनुकंपा से आज हम आप सबको उनके छत्र छाया के नीचे उनके चरणारविंद में उनके चरण कमलों में सेवा अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा फल है सत्संग का हमें इस भागवत सत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री श्री गौर निताई जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हुए जिन महान व्यक्तित्व के माध्यम से भगवान का वो कृपा हमें मिल रहा है वो है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो कि इस कलयुग के आचार्य हैं इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान गोपी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस दास पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से गुरु प्रभुपाद जी और वैष्णव प्रसन्न हुए। इसी के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। बड़ा आनंदमय भगवान का लीला का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कर रहे हैं। केवल दो और दिन बचे हैं। परीक्षित महाराज जी के उन ऊंचे कोटि का, तीव्र भक्ति का, रस का आस्वादन करा रहे हैं। किसी भी हालत में परीक्षित महाराज जी, जो कि श्रवण आचार्य हैं, अपने श्रवण के माध्यम से, और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी वे कीर्तन आचार्य हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं उनके चेतनाओं को कि आप उन परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त और भक्तों के माध्यम में जो प्रेम है उसे सुनिए। भक्तों का क्या प्रेम है और भगवान उन भक्तों के लिए कैसे कैसे क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो देखिए। यह है असली जीवन। जय श्री श्री राधा गिरधारी जय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, श्री श्री गौर नीताय की जय। परीक्षित महाराज जी की अभी यही जिज्ञासा है, मुझे सुनाइए सुनाइए उन भगवान की दिव्य कथाओं को, सुनाइए उनके दिव्य लीलाओं को, सुनाइए मैं और सुनना चाहता हूं। तो अपने शिष्य को परखते हुए वात्सल्य रस का पूरा आनंद दिलवाया है। अगासुर के वध के बाद, ब्रह्म विमोह लीला के बाद वात्सल्य रस का पूरा आस्वादन कराते हुए, कालिया नाग पे नृत्य कराते हुए, यशोदा मैया का प्रेम को पूरा आस्वादन कराते हुए, अब साक्य रस का आस्वादन करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज जी। परीक्षित महाराज जी को तैयार करा रहे हैं। यह है भक्ति और यह है भक्त, जिन भक्तों के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं करते हैं, नाचते हैं उनके लिए। भगवान नाचेंगे उनके लिए। आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे, दसम स्कंद में भगवान कृष्ण का असुरों का वध का वर्णन नहीं आता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन असुरों का वध का वर्णन नहीं करेंगे। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि रोज एक एक असुर का वध होता है, पर सुनाना है परीक्षित महाराज जी को केवल दो दिन में ऐसे ऐसे लीलाएं जिससे परीक्षित महाराज जी को और कृष्ण के प्रति उनके अंदर और आकर्षण उत्पन्न हो जाए। बस कृष्ण ही कृष्ण, कृष्णमय, भक्तिमय, नारायण परायण, कृष्ण परायण, ऐसे लीलाएं, ऐसे भक्तों का वर्णन के द्वारा। अब प्रलंबासुर के वध के बाद वेणुगीत, वेणुगीत के बाद वस्त्रहरण, वस्त्रहरण के बाद गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला के बाद रास पंचायत का वर्णन आएगा। उसके बाद पूरे माधुर्य रस का आस्वादन होने के बाद मथुरा लीला प्रारंभ होगी। तो इन दौरान परीक्षित महाराज जी को पूरा तैयार कर रहे हैं, बस इसे आस्वादन कीजिए, यही है असली जीवन। तो असली जीवन का अर्थ होता है भगवान के साथ। गर्मी के मौसम में भगवान के सानिध्य में ब्रज का लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के मौसम में वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं, यानी कि गर्मी का ताप भगवान के सानिध्य में उत्ताप का अनुभव नहीं होता है, ठंड का अनुभव नहीं होगा, भगवान का भक्ति करें और वर्षा का ताप का वर्णन नहीं आएगा अगर भगवान का भक्ति करें। ये ताप तो उनके लिए है, त्रिताप तो उनके लिए है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य था कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ था। नवदीप मंडल परिक्रमा में एक क्षेत्र आया जहाँ पे ऋतुदीप में जब परिक्रमा करके हम एक दिन आराम करते हैं, वहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे सब आराम करते हैं, रात का निवास होता है। तो उस दिन बड़ा पंडाल कार्यक्रम होता है, देश विदेश के जितने भी भक्त हैं, गोरे काले लंबे मोटे छोटे नाक चपटे पीले सब आ जाते हैं उसमें। और इन सब को देखकर जितने भी गांव के हैं वो सब एकत्रित हो जाते हैं, सब एकत्रित हो जाते हैं। तब वहां पे एक अच्छी बात बताया था एक वैष्णव भक्त ने, बहुत अच्छा लगा। कहा कि भारत देश है, ये पवित्र देश है, पावन देश है, यहाँ के जो ताप है, यहाँ के जो वातावरण है, बहुत अनुकूल है मनुष्यों के लिए। ध्यान देना, वो शब्द इस्तेमाल के है, मनुष्यों के लिए अनुकूल है भारत देश। हम उस देश से आ रहे हैं, वो था रशिया के, हम उस देश से आ रहे हैं जहाँ पे मौसम 12 महीना ठंडा रहता है, और उस ठंड में हम लोग को ऐसे ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहनने होते हैं। और जाइए अफ्रीका में, इतना धूप है, रेगिस्तान है। कहा कि पुण्य आत्माओं के लिए ये भारत देश है, और उन पुण्य आत्माओं में भी अगर कोई भगवान का भक्ति करे तो क्या कहना। गर्मी में वसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं भगवान के सानिध्य में भी, इसी प्रकार से वही भगवान कलयुग में भगवान के नाम में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेते लेते गर्मी हो या ठंडी हो या बारिश हो, कोई कष्ट का अनुभव नहीं होगा, यह है भक्ति। तो इन भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज साक्य रस का आस्वादन करा रहे हैं परीक्षित महाराज जी को। तो कृष्ण कभी कभी नाचते हैं, कृष्ण कैसे आते हैं, माँ यशोदा उनको अच्छी तरह से कपड़े इत्यादि डालकर श्रृंगार करके सुबह 7:15 का श्रृंगार करके भेजते हैं। तो श्रृंगार करते हुए कृष्ण जो जाते हैं, बोलते हैं, हे मंडली भद्र, हे बलभद्र, आप लोग आगे आगे जाना, इस नटखट कृष्ण को आगे मत भेजना। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, बलभद्र और मंडली भद्र बोलते हैं ठीक है माता। फिर पीछे और सखाओं को रखते हैं और अतर्क पत्र को बोलते हैं ठीक है, कंधे में अपना भगवान का आभूषण लेकर जाना, कृष्ण के आभूषण लेके जाना, उनके लिए खाने पीने का पूरा आइटम्स, मोदक इत्यादि रख देते हैं, लड्डू इत्यादि, अमृत केली और क्या क्या लड्डू सारे रखते हैं। तो वो जानते हैं ना कैसे बड़ा बंबू होता है, एक तरफ कपड़े का एक बैग होता है और दूसरे तरफ इसे करके लेके जाते हैं उस, तभी इस टाइप के करियर नहीं होते थे। अभी जब हम लेके आते हैं वहाँ पे एक लाल कलर का बैग में एक ऐसा टिफिन है, पर वो टिफिन जो है ऐसे कंधे में लगाए जाते हैं, तो दोनों रतक पतक चलते हैं ऐसे ऐसे, और कृष्ण बीच बीच में घेर के रखते हैं। माँ यशोदा का आज्ञा है कि कृष्ण को घेर के रखो, तो कृष्ण को घेर के रखते हैं और कृष्ण बीच बीच में चलते जाते हैं। कृष्ण के सुंदर आभूषणों का वर्णन आता है। तो बीच बीच में कृष्ण को उज्जवल या सुबल तांबुल देते हैं। तांबुल का अर्थ क्या होता है, पान, और बीटल नट भी देते थे, बीटल नट यानी कि सुपारी भी देते, और कृष्ण चबाते हैं, उनके होंठ जो पूरा लाल होते हैं, और कृष्ण बड़े स्टाइल में पिचकारी छोड़ते हैं और उसे रत्रक पकड़ लेते हैं यानी पकड़, यानी कि वो थाली में एक उसमें पकड़ते हैं। ये है कृष्ण का साथ सारे, और इसमें सब नाचते गाते जाते रहते हैं। और ऐसे जाते जाते जब वो वन में आते हैं तो कृष्ण वन के सौंदर्य को देखकर, कृष्ण के सखा लोग वन के सौंदर्य को देखकर बोलते, कृष्ण ये सुबह का आभूषण निकाल दो, आपके माँ ने जो श्रृंगार किया है वो उतना कुछ ठीक नहीं है, तो फूल मोरपंख ये सब डाल के और एक सुंदर आभूषण पहनाते हैं। फिर कृष्ण और चलते हैं तो बोलते, कृष्ण आपने कालिया पे नाचा ना, खूब नाचा ना, वो अंडर वाटर डांस था, हम लोग को पूरा डांस देखने को नहीं मिला, 6 घंटा आपने खूब नाचा, देवताओं ने बाजा बड़ा बजाए, अभी हम भी आपका वो डांस देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्णस्य नृत्ययतः, कृष्ण आप नाचो ना, नाचो ना। देखिए वो कृष्ण जो पूरे विश्व को नचाते हैं, पूरे भौतिक जगत को नचाते हैं, वैकुंठ को नचाते हैं, सबको नचाते हैं, पर वो कृष्ण के वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं शेष महेश गणेश सुरेश, जिसका वंदन करते हैं वो कृष्ण, शेष यानी कि शेषनाग, गणेश यानी कि गणपति, महेश यानी कि शिवजी, और सुरेश यानी कि इंद्र। तो इंद्र सब लोग कहना उनका गुणगान करते हैं, उनके सामने टट कांपते हैं, पर ब्रज का क्या महिमा है, क्या भक्ति का धन है कि कृष्ण को बोलते हैं एक फूटा हुआ मटका का एक छोटा सा हिस्सा को मैं छास रखे, छास चाहिए, तो कृष्ण सोचते हैं ये छास से बढ़कर दुनिया में और कोई अमृत नहीं है, तो मुंडी रहते हैं। तो बोलो नाचो, गोपियां बोलते हैं कि नाचो, छास चाहिए तो नाचो, तो लिखते हैं कि छसिया भर छास प्राप्त करने के लिए कृष्ण थैं थैं करके नाचते हैं, ठम ठुम ठम ठुम, फिर बोलते छास पियो। क्या कृष्ण के पास छास की कमी है, दही का सागर है, दूध का सागर है, ऐसे कृष्ण को ये छास में क्या स्पेशल लग गया, प्रेम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भरा हुआ है पूरे संसार में, पर क्या भक्ति चाहिए, भक्ति था तो बोले नाचे, ठीक है टिम टिम करके नाचे। बोला ठीक है उनके सामने नाचा, कालिया के सामने नाचा, हमारे सामने क्यों ना नाचते हो, फिर बोला ठीक है मैं आपके सामने भी नाचूंगा। कृष्णस्य नृत्ययतः, देखो कृष्ण नाचने लगे उनके लिए। जब कृष्ण नाचने लगे, देखो बच्चे लोग का एक उम्र होता है, जब स्वाभाविक कभी 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 हम देखते हैं मंदिर में भी छोटे बच्चे आते हैं ना, या कीर्तन होता है या कभी कभी कीर्तन भी नहीं होता है, तो अपने पिताजी का हाथ या माताजी का हाथ को छोड़ के ऐसे टिप टिप करके नाचते हैं, जंपिंग करते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, इधर उधर घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, ऐसे नाचने लग जाते हैं। तो बच्चे लोग हैं, 6 साल का उम्र है, 7 साल का उम्र है, कृष्ण भी नृत्य करने लग गए हैं। जो फिर कहते हैं कि ऐसा जब कृष्ण नृत्य करने लगे, इतना खुश हो गए सारे सखाए, तो केचित कुछ उनमें से जगहु, कुछ भक्तों ने गाना गाने लग गए, यानी कि और नाचो और नाचो और कृष्ण को नचाने के लिए। फिर कुछ ने क्या किया, अपने कमरबंद से, कमरबंद होता है ना, कमरबंद में भोंपू रखा था, एक भोंपू तो भैंस का सिंह से बनाते हैं, दूसरा वो जंगल के पत्तों से बनाया था, वो बजाने लगे पुम पुम कर गए, तो कृष्ण और नाचने लगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन कहते हैं कि केचित जगहु केचित वादयन, ऐसे ऐसे वाद्य कोई पत्थर लेके टप टप करके करता लेते, फिर वेणुपालय तले, कुछ लोगों ने यहाँ बंसी बजाए और किस ने हाथ से ताली बजाए ऐसे टप 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 टप, ताकि कृष्ण और नाचे, तो कृष्ण और नाचे लगे। फिर बोलते हैं सिंह श्रृंगे, सिंह से प्रसन्न शमशु, कुछ लोग ने सिंह बजाए भोंपू बजाए और कुछ लोग ने प्रसन्न से वाह कृष्ण वाह साधुवाद किए, अतः परे आप जैसा कोई नहीं नाचते हो, और सच में कृष्ण जैसे कोई नाचते नहीं, ये सब का आनंद ले रहे थे ये सका भक्त लोग। देखिए ये है असली जीवन, ये है असली जीवन, जीवन यानी कि आनंद, जीवन यानी कि सुख, और कितना विपरीत और विषम और भयंकर इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं, ये जीना भी कोई जीना है, इतना दुख इतना कष्ट, अरे कितना दुख कितना कष्ट, एक जीव दूसरे जीव का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, और क्या कहना है। कौन किसको मार रहा है? पाकिस्तान भी जीव है और भारत भी जीव है, वही एक दूसरे को मार रहे हैं। भयंकर भयंकर विषम विपरीत परिस्थिति में हम दुख का अनुभव करें, कहीं ना कहीं सुख कभी तो मिल जाए। क्या जीवन है ये! पर यहां पे देखिए कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं सारे सखा लोग। तो ये सब नाचते गाते गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे भवरा जैसे, कभी दूसरे के पीठ पे ठप ठपा रहे हैं, फिर आगे जाके वे बहुत नाचते गाते आज के इस श्लोक में कहते हैं कि क्वचित, कभी कभी वो नकल करते हैं, दर दूर मेंढक का, यानी कि गर्मी के मौसम में लगता है ये मेंढक बाहर आ गया लगता है, पर बसंत ऋतु ये मेंढक बाहर आ गया। तो उस मेंढक को देख के कृष्ण भी वो मेंढक बन गए और बोला कि देखो देखो ये मेंढक अच्छा जंप करता है कि मैं अच्छा जंप करता हूँ। कृष्ण एक जंप मारते हैं, सब लोग बोला मेंढक अच्छा जंप करता है, अच्छा मैं और एक जंप करता हूँ। तो कृष्ण ऐसे कभी कभी मेंढक जैसे क्वचित धर दूर प्लाबे इस प्रकार से जंपिंग करने लगे, कूद करने लगे। फिर देखा कि भक्त लोग, ये देखो ये कब होता है, ऐसा कब कर सकते हैं कृष्ण, या ऐसा बच्चे लोग कब करते हैं, जब बहुत खुश होते हैं ना तब बच्चे लोग करते हैं। तो ब्रज में वातावरण आनंद से भरा हुआ है, स्वाभाविक कृष्ण भी ऐसे कूद रहे थे, सारे सारे सखा लोग भी ऐसे जंप मेंढक जैसे जंपिंग कर रहे थे, मोर को देख के मोर का नकल करने लग जाते हैं। तो ये कब करते हैं बच्चे लोग, जब खुश होते हैं, जब टेंशन में रहेगा तो बच्चे लोग देख के भी नाचेंगे नहीं, पर वातावरण भक्तिमय आनंदमय है तो ये ऐसा जीवन है, ये जीवन असली जीवन है। देखिए कृष्ण तीनों लोक के नाथ है, जगन्नाथ है, पर परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि देखो वृंदावन में क्या प्रेम है, जिस प्रेम से भगवान कृष्ण अपने सारे ऐश्वर्य को भूलकर बच्चा जैसा खेल रहा है। फिर कहते हैं कि विविध प्रकार के उपहास हंसते, इसको देखो नाचने नहीं आता है, ये गिर गया। बच्चे लोग देखो कभी कभी भागते भागते कोई बच्चा गिर जाता है तो बाकी बच्चे मिलकर हंसते हैं, आपने देखा कभी? इसमें बड़े लोग देखेंगे तो बोले क्या है ये, एक बच्चा गिरा बाकी हंस रहा है। पर होता है स्वभाव, जब हम बहुत खुश रहते हैं ना, और बच्चों का उम्र ऐसा रहता है कि छोटे छोटे बातों में हंसते हैं, बड़े लोग को इसमें हंसी आती नहीं है, एक गिर गया तो हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ, और उपहास करते हैं, देखो मधुमंगल ऐसा है। तो ये सब करते हुए उपहास करते थे, केचित श्याम दो लिख गया, इस प्रकार से कभी कभी वो यहाँ पे झूले में झूलते हैं, झूला एक झूला बना लेते हैं, और झूला जो है उसमें उसमें ये झूला कैसे होता है, कभी वटवृक्ष या वटवृक्ष को देखा, उसके जो वटवृक्ष का एक भगवान कहते हैं ना कृष्ण 15वें अध्याय में, उर्दम मूल आदाशा का अश्वतम प्रवर अभयम चंदाम से ऐसे परनानी अस्तम वेद सवेद अदाचा उर्दम, ऐसे कह भगवान कहते हैं कि कभी कभी वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है, वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि उसके शाखाओं में से कुछ रस्सी जैसे आने लग जाता है, तो उन रस्सियों को एक बांध कर कृष्ण झूला करते हैं, शका लोग झूला करते हैं और उसमें भी आनंद लेते हैं। फिर कभी कभी क्या करते हैं, वो राजा बनते हैं, देखो मैं राजा बन गया, और क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक स्थान है यमुना में जहाँ जाने से पहले सबको कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो कृष्ण वहाँ पे सबको रोक देते हैं, चलो चलो पैसा निकालो, राजा मैं यहाँ का राजा हूँ। तो सखियाँ बोलते तू कैसे राजा हो गया, नंद महाराज राजा है। फिर बाद में राधा रानी और उनके सखियाँ कृष्ण को पीट कर बोलते हैं कि अब ब्रज का राजा वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी, ये बहुत बड़ा एक अलग लीला है जिसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी कभी कभी उच्चारण करते समय मिले तो करेंगे, पर आज साक्य रस का आस्वादन कराते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि चलो यह है असली जीवन। अब साक्य रस का वर्णन करते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं सखा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रज सखा और एक होता है पुर वयस्य। ब्रज के जो सखा हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो चार श्रेणी के हैं। ब्रज के सखा कितने श्रेणी के हैं? चार। और ये सखा का बारे में वर्णन करते हैं, सखा यानी कि कोई कोई उम्र में लगभग बराबर के हैं। तो एक सुहृद है, दूसरा सखा है, प्रिय सखा है, प्रिय नर्म सखा। ये चार प्रकार के सखा का वर्णन करते हैं। ब्रज सखा चार प्रकार के, पूर्ववासीय यानी कि पूर का अर्थ होता है शहर, यानी कि हस्तिनापुर और मथुरा और द्वारका। हस्तिनापुर में मित्र कौन हुए? अर्जुन, भीम, द्रौपदी, श्रीदाम ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण वो भी हो गए। और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? अर्जुन। अर्जुन से भगवान बहुत प्रेम करते थे, उम्र भी लगभग उनका एक ही था, पर अर्जुन से प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि अर्जुन जो नाम है कृष्ण का, एक वृंदावन का सखा का नाम था, और अर्जुन का नाम सुन के उन्हें ब्रज का याद आती थी, इसलिए कहते कि कृष्ण अर्जुन को सबसे प्रेम ज़्यादा प्रेम करते थे। जैसे जैसे सुदामा, हाँ वो संदीप मुनि के आश्रम में अनेक थे बच्चे, पर सुदामा नाम का जो था विप्र उन्हें ब्रज का याद दिला देते, वृंदावन का याद दिलाते थे, तो इसलिए कहा कि सुदामा से। बस ब्रज का एक छोटा सा कनेक्शन मिल गया ना, कृष्ण उसमें रिझ जाते हैं, बोला कि ये मेरा सबसे बड़ा मित्र है। बोले तो इस प्रकार से अर्जुन से सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से पूर्व यानी कि शहरों का दोस्त एक हो गया। अब ब्रज सखाओं क्या और आते हैं जिसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सखाओं में बड़ा प्रेम होता है। कहते हैं कि ब्रज सखाओं की जय जयकार हो, जो कि कृष्ण के उम्र, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला और कृष्ण के श्रृंगार और रूप लगभग उनका एक जैसा ही रहता है। सारे सखा कृष्ण के उम्र के बराबर, सारे सखा कृष्ण जैसे ही नटखट लीला, और सारे सखा कृष्ण जैसे ही ड्रेसिंग भी करते हैं। ऐसे सखाओं को जय जयकार, और उनका रूप भी लगभग कृष्ण जैसे ही है। और ये लोग क्या करते हैं, उनको आदत पड़ गई है बाएं हाथ में वेणु बंसी बजाना और या कभी कभी भोंपू बजाना, और दाहिने हाथ में लठिया लेकर घूमते रहते हैं। और कृष्ण जैसे ही वे श्रृंगार भी करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं कृष्ण के सानिध्य में। कृष्ण है, कोई डरने की बात नहीं है, उनको मालूम है कि कृष्ण हमारा रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ ये सखाएं साथ में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में तो हम सुनते आ रहे हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं सखा, मैंने क्या बताया, चार प्रकार के। इसमें सबसे पहले कौन हो गए? सुहृद। सुहृद का अर्थ होता है जो हमारा हित चाहता है। तो माँ यशोदा बलराम जी और मंडली भद्र को बोलते हैं, तुम उम्र में बड़े हो, आप सब उम्र में बड़े हो, इसका ध्यान रखना। सुहृद का अर्थ होता है कृष्ण के उम्र जो है उससे थोड़ा, एक साल या दो साल बड़ा। कौन कौन है? तो कहते हैं कि बलराम जी है, सुभद्रा नाम का, ये सुभद्रा जो है उनकी बहन नहीं है, सुभद्रा नाम का एक और सखा है, वो उम्र में बड़ा है। मंडली भद्र नाम का भी सखा है। फिर भाद्र वर्धन नाम का सखा है, गोप बटा है, यक्ष है, इंद्र बटा है, भद्रांग है, वीरभद्र है, ये वीरभद्र ब्रज का वीरभद्र, ठीक है, महागुना है, विजय है, बलभद्र, ये सब है। आप देखिए इनका उम्र लगभग कृष्ण से एक साल या दो साल बड़े हैं, और उनका रंग रूप क्या है? तो कहते हैं कि मंडली भद्र और बलभद्र इनमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। मंडली भद्र और ये आगे आगे चलते हैं और कृष्ण पीछे पीछे रहते हैं। इसका और एक कारण है, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण यह है कि यशोदा मैया कह रही कि आप आगे रहना, इसको आगे जाने मत दो। ये बहिरंग का कारण, अंतरंग का कारण यह है कि कृष्ण चाहते कि कृष्ण बलराम जी आगे, बड़े भैया आगे आगे रहे, क्योंकि घर से जब बाहर निकलेंगे, जब सखियों को देखने के बारी आएगा यहाँ वहाँ पे, तो बड़े भैया रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे, टेंशन में रहेंगे, पर बड़ा भैया नहीं रहेगा तो तिरछी नगर से इधर उधर देख भी लेते हैं कृष्ण। थोड़ा कृष्ण थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बलराम जी आप आगे रहो, माँ यशोदा ने बोला ना, तो यहाँ यहाँ सखियों को देखते हैं। तो ये अंतरंग कारण हो गया। मंडली भद्र का कैसा रूप है, तो कहते हैं कि मंडली भद्र थोड़ा पीले रंग के हैं, उनका चमड़ी थोड़ा पीले रंग का है थोड़ा सा, और उनका श्रृंगार जो है बहुत ही सुंदर होता है, और वो हमेशा अलग अलग प्रकार के लकड़ी, रंग का लकड़ी लेते हैं अपने सर पे, मोर पंख धारण करते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। यह है मंडली भद्र। यह मंडली भद्र क्या सेवा करते हैं, उसका भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ तो सेवा, तो लिखते हैं मंडली भद्र का सेवा क्या है, तो कहते हैं कि मंडली भद्र सका लोग बोलते हैं देखो देखो हमारे प्रिय कृष्ण बहुत थक गए हैं, वो गाय के साथ चलते चलते थक गए, गायों का पीछा करते करते थक गए हैं, चलो हम लोग मालिश करते हैं। तो मंडली भद्र धीरे से कृष्ण के सर को अपने कभी कभी जांग पर रखते हैं या कभी कभी उनका चरणों का सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि मंडली भद्र कृष्ण का सर का मालिश करते हैं धीरे से, और सुबल से कहते हैं हे सुबल इधर आ, क्योंकि सुबल उम्र में कम है, कृष्ण का चरण का आप मालिश करो, ठीक है, वो मालिश करते हैं। तो यह है सेवा कृष्ण। बलभद्र, बलभद्र उम्र में बड़े हैं, कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं मैं बलभद्र जी का चरण कमलों में आश्रय लेना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और उनकी कुंडल जो है वो उनके होंठों को स्पर्श करता है, और ऐसे जो बलभद्र हैं उनका तिलक जो है कस्तूरी से, हाँ कस्तूरी का तिलक धारण करते, उनका वक्षस्थल जो है, छाती जो है बहुत ही विशाल है और सुशोभित है गुंज माला से। ये गुंज माला जो है, आप सब जानते हैं गुंज माला क्या होता है, और उनका उनका जो शरीर का कांति क्या है, गोरे रंग के हैं बलराम। गुंज माला क्या होता है, आप सब जानते हैं गुंज माला क्या होता है, गुंज माला लाल छोटा सा होता है, लाल काला कभी कभी सफेद होता है, गणेश जी को ज्यादा करके देते हैं ना, गुंज माला बोलते हैं इसको, उसका माला। कृष्ण का श्रृंगार कितना भी हो, कृष्ण का श्रृंगार कितना भी हो, माँ यशोदा कितना भी उनको सोने चांदी हीरी मोती का माला डाले, जब तक गुंज माला नहीं डाले कृष्ण सेटिस्फाई नहीं होते। माँ गुंज माला, जब गुंज माला डाला तो हो गया फाइनल, फिर कृष्ण निकलते हैं। चलो तो उसी का नकल करते हुए सारे ब्रजवासी मंडली भद्र ये सब गुंज माला धारण करते हैं। ये हो गया जो कृष्ण से बड़े हो गए सुहृत। अभी सका, सका वो है कृष्ण के मित्र जो कृष्ण से उम्र में थोड़े छोटे हैं, थोड़े छोटे हैं। एक बार कृष्ण बहुत छोटे थे, एक बार कृष्ण बहुत छोटे यानी कि दूसरे के घर पे गए माखन चोरी करने के लिए, तब एक बच्चा सो रहा था तो कृष्ण ने उनको चिमटी मार दिया, तो बच्चा खूब रोया। वो बच्चा कृष्ण ने चिमटी मारा तो बच्चा रोया नहीं, कृष्ण ने कान में कुछ कह दिया तो बच्चा खूब रोया, तो बच्चा चिमटी मारने से रोया नहीं क्योंकि चिमटी उनको अच्छा लगा, कृष्ण का चिमटी है, पर कान में बोला आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखो मैं अब साक्य लीला करने वाला हूँ, मैं गोप सखाओं के साथ वन में जाऊँगा, खेलूँगा, माखन चोरी कर इत्यादि करूँगा, पर आप बहुत छोटे हो, आप अभी चल भी नहीं सकते हो, इसलिए आप मेरे लीलाओं में नहीं आ सकते। ये बोला मेरे लीलाओं में नहीं आ सकते तो बच्चा रोने लग गया, ये बहुत छोटे हैं ना इसलिए भगवान कृष्ण की लीला में नहीं आ सकते। तो सुहृत हो गए जो बड़े हैं, और सका जो हैं वो कृष्ण से थोड़े उम्र में छोटे पर कृष्ण के लीला में आ सकते हैं और कृष्ण से बहुत निकट के रहते हैं और वे अलग अलग प्रकार के करते हैं सेवा। इनमें से मुख्य सखा कौन है? विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रष्ट, वरुताप, मारंदा, कुसुम पीड़ा, मणिबंदा, करंदाम, ये सब सखा हैं कृष्ण के, जो कृष्ण से थोड़े उम्र में छोटे हैं। इनके अंदर भी कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का नकल करते हैं, ड्रेसिंग भी उनका कृष्ण का ही करते हैं। इनका उनमें से सर्वश्रेष्ठ सखा जो है देवप्रष्ट माने जाते हैं। देवप्रष्ट कैसे हैं? तो कहते हैं कि देवप्रष्ट बहुत ही बलवान है, बहुत विद्वान है और गेंद का गेंद फेंकते हैं और पकड़ते हैं ना, कैच गेंद क्रिकेट में, उसमें वो बहुत एक्सपर्ट है। वो हमेशा सफ़ेद ड्रेस पहनता है और उसके बाल जो हैं रस्सी जैसा, ऐसा जटा जैसा बन जाता है। अब उसका सेवा क्या है? तो कृष्ण कहा कि हे देवप्रस्थ, देवप्रस्थ भी कृष्ण के चरण कमल का मालिश कभी कभी करते हैं। अब आती है बारी प्रिय सखाओं का। इन प्रिय सखाओं में आते हैं जो कृष्ण के लगभग उम्र के बराबर है, श्रीदाम, सुदामा, दामा, वासुदामा, किन किनी नाम का भी एक सखा है, ठीक है। ये सब कृष्ण के उम्र के बराबर, टोक कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुंड्रिका नाम का एक सखा भी है, विटंका, कलाविंका, ये सब कृष्ण के सखा है। इनका भक्ति क्या है? देखिए इनका भक्ति क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सुहृत जो है कृष्ण से उम्र में बड़े, बलभद्र और मंडली भद्र हो गए, सखा कृष्ण से उम्र में छोटे, पर ये प्रिय सखा कृष्ण के उम्र के बराबर है, कृष्ण के उम्र के बराबर है। उनका भक्ति क्या है? उनका सेवा क्या है? कहते हैं कि उनका सेवा क्या है, वो कृष्ण को आलिंगन करते हैं और कृष्ण के आगे पीछे रहते हैं और कृष्ण के नजरों के नजदीक रहते हैं, वे कृष्ण को हमेशा आनंद में रखते हैं, ये इनका सेवा है। ये लोग क्या करते हैं? इनका एक ही काम है, वो मधुमंगल को बहुत सताते हैं और मधुमंगल के हाथ से लड्डू चुराते हैं, यही इनका काम है, सेवा है। ये ऐसे सखा हैं जो मस्ती बहुत करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ सखा कृष्ण के, प्रिय सखा हो गए, अभी आएंगे प्रिय सखा। इन प्रिय सखा में अभी जो चल रहे हैं, प्रिय सखा में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कहते हैं कि श्रीधाम। श्रीधाम कर रूप कैसा है? तो श्रीधाम जो है पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। वो अपने हाथ में भैंस का सिंह का भोंपू लेकर आते हैं। वो लाल रंग का पगड़ी डालते हैं, हाँ लाल और तांबे रंग का पगड़ी डालते हैं और उनका शरीर कैसा है? श्याम रंग का है और उनके गर्दन में एक अच्छा वनमाला रहता है। श्रीधाम का सेवा क्या है? श्रीधाम ने एक बार कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तू बहुत ही दुष्ट है, तू अकेला छोड़कर यमुना में भाग गया था, हम सब आपके पीछे पागल हो गए थे, आप दिखाई नहीं पड़े थे, ये कौन सा लीला है? यमुना में भगवान कृष्ण अकेले गए थे, यह है कालिया दमन का लीला। एक्चुअली श्रीधाम ने का गेंद लेने के लिए यमुना में कूदते हैं कृष्णा और श्रीधाम सब पागल होके भागने लगे, पर यमुना के तट जैसे बचे तो बलराम जी ने रोक दिया। अगर फिर कहा कि अभी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन फिर से हुआ, अगर आप हमें इतना सताया ना, श्रीधाम बोल रहे इतना सताया ना, आपको चाहिए हम सबको सांत्वना पहुंचाए, चलो आओ आलिंगन करो। तो इस प्रकार से आलिंगन करके बोलते हैं कि ठीक है। ये तीसरा श्रेणी हो गया प्रिय नर्म सका, चौथा श्रेणी के सका, ये सब साथ साथ सुबह सुबह नाचते गाते बहुत रहते हैं, उन सखाओं के साथ ये सब लीला कर रहे हैं कृष्ण। तो प्रिय नर्म सका वो सखा हैं जिनके साथ कृष्ण अपने गुह्य बातें बताते हैं। उन सखाओं में कौन कौन है? सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल। देखो अर्जुन प्रिय सखाओं में से एक सखा है, उम्र इनका लगभग कृष्ण जैसा है और बहुत हंसी मजाक करते हैं। इनका एक ही काम है कृष्ण को गोपियों के साथ कैसे मिलाना है, ये काम जो है ये सखा लोग करते हैं। देखिए ये काम सुहृद के साथ नहीं करते, मंडली भद्र को नहीं बोल सकते कि मैं सखियों को मिलने जाता हूँ। तो बोले ये क्या, ये दोपहर का समय सखियों के मिलने का, गाय गोचरण माँ यशोदा को बोल दूंगा। तो बोले उनको नहीं बोल सकते, जो उनसे छोटे उम्र में है, छोटे जो है उम्र में, उनको बोलेगा बोले कृष्ण ये भी करते हैं, वो डर जाएंगे, शौक हो जाएंगे। पर वो प्रिय सखाओं को बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। उन प्रिय सखा में अर्जुन आ जाते हैं, इसलिए अर्जुन हस्तिनापुर में अर्जुन नाम था तो उसको सखा बना दे। सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत और उज्ज्वल, उनका भक्ति क्या है? सुबल जो है कृष्ण के कान में कुछ बोलते हैं, और क्या है वो श्याम दासी, यानी कि कृष्ण के राधा रानी के सखियों में से कोई सखी एक लेटर देती है, वो लेटर सुबल को देते हैं। सुबल जो वो लेटर धीरे से लेके आते कृष्ण के कान में, बोलते भाई भाई सुनो सुनो, अभी राधा कुंड में 12 बजे ठीक जाना है और ये ड्रेस पहना होगा राधा रानी, और आपको ये ड्रेस पहनना है। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और एक सखी जो है कृष्ण के लिए, पालिका नाम का सखी जो है, उनके लिए तांबुल और सुपारी देती है। वो चुप से सुबल जो है लेकर बोलते हैं आ गया तांबुल, और तो इस प्रकार से देते हैं। और तारका नाम का सखी जो है सुबल के हाथों में, ये मंडली भद्र को कभी देंगे नहीं, और क्योंकि उन लोग का दूसरा प्लेटफॉर्म है। एक तारका नाम का ये जो सखी है, ये ने माला बनाया, ये पहनिए, ये पहन कर आप जाइए। तो इस प्रकार से सुबल, इन सब में श्रेष्ठ कौन है प्रिया सखाओं में? कहते सुबल और उज्ज्वल सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इन सुबल और उज्ज्वल में उज्ज्वल सबसे श्रेष्ठ है। उज्ज्वल का रूप क्या है? तो कहते उज्ज्वल जो है सोने रंग का है, तप्त कांचन, वो कृष्ण को अति 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 प्रिय है। सुबल सारे सखाओं में, अब देखिए सारे सखाओं में कृष्ण को सुबल अति प्रिय है। वो हमेशा गले में एक वनमाला धारण करते हैं और पीला रंग का पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। उनके आंखें कमल जैसे पंखड़ियों के जैसे हैं। सुबल के भी सुगल का सेवा क्या है? सुबल का सेवा यही है, कृष्ण को राधा रानी से कब मिलाएं, किधर मिलाएं, उसका खबर पहुंचाएं, और कभी कभी वो कृष्ण के साथ साथ गोपियों को मिलने भी जाते हैं। उज्ज्वल के रूप के बारे में वर्णन करते हैं, उज्ज्वल जो है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और उनके आंखें हमेशा तरसते रहते हैं, चटपटाते रहते हैं या रेस्टलेस रहते हैं। वे 3 प्रकार के फूल डालते हैं अपने इसमें, और उनका शरीर का जो सुगंध है वो कृष्ण के शरीर से सुगंध आने वाला सुगंध है, और उनके गले में मोतियों का एक माला हमेशा रहता है। और उज्ज्वल का सेवा क्या है? उज्ज्वल का सेवा यही है कि अलग अलग गोपियों का जो संदेश है वो कृष्ण के पहुंचाए, कृष्ण इसके निकल जाए। तो इस प्रकार से कृष्ण के अनेक अनेक सखाओं का वर्णन रूप गोस्वामी पाद के द्वारा हमें मिल रहा है। और यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, यह है जीवन, असली जीवन तीव्र भक्ति के द्वारा ही हम कृष्ण के, यहाँ पे वर्णन आता है कि कृष्ण के इस साख्य लीला में अगर किसी को प्रवेश होना है तो 3 तरीका है। कृष्ण के इस साख्य रस में अगर हमें प्रवेश होना है तो 3 तरीका है। क्या हम इस 3 तरीका को जानने का प्रयास करेंगे? अगर जानेंगे तो करेंगे, है ना, प्रविष्ट हो सकते हैं। कृष्ण के साक्य लीला में प्रविष्ट होने का तीन तरीका है। क्या तीन तरीका है? तीन प्रकार के लोग कृष्ण के सखा बन सकते हैं। एक है जो कृष्ण के नित्य सखा है, यानी कि वो नित्य है, हमेशा से कृष्ण के सखा है। दूसरे हैं जो बहुत ही उन्नत कोटि के देवता है, वो लोग कृष्ण के सखा बन सकते हैं। तो हमारा नंबर कट गया, मैं अपने बारे में कहता हूं, आप लोग बड़े चढ़े भक्त हैं, नित्य है या बड़े बड़े देवता है, वो आप जाने कृष्ण जाने। पर अपने बारे में कहता हूँ, मेरा नंबर इन दोनों में नहीं लगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर में कहीं चांस है कि नहीं। कुछ भक्त साधन भक्ति के द्वारा कृष्ण के साक्ष्य लीला में आकर्षित हो जाते हैं, तो ऐसे भक्त बहुत तीव्र भक्ति अगर कर देते ना, तो वो आगे जाकर कृष्ण का लीला में सखा बनकर कृष्ण के साक्ष्य लीला में सेवा कर सकते हैं। और ऐसे अगर तीव्र भक्ति करे, एक दिन आएगा देहांतर हो जाएगा, कृष्ण की लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे, नित्य लीला प्रविष्ट हो जाएंगे और कृष्ण के साथ हाँ जंपिंग करेंगे, केचित दर दूर प्लावे, मेंढक जैसा विविध प्रकार का उपहास करेंगे। कभी कभी हम अलग अलग प्रकार से झूला झूलेंगे, कभी कृष्ण के साथ हाँ हम लोग राजा बनने का नकल करेंगे। कितना आनंद है, कितना आनंद है कृष्ण के सानिध्य में। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कृष्ण के इस आनंदमय लीला में प्रविष्ट नहीं होकर। हम अपने आप को धोखा देते हुए इस संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास करें, जहाँ पे सुख है ही नहीं। चलिए तीव्र भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न आप लोग को पूछने का अधिकार मैंने दूंगा, प्रश्न मैं पूछूंगा, बताइए समय हो गया। अरे